Yashodananda braja jana ranjana Yamuna tira vanachari Yamuna tira vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sab log boliye Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gorango, Nitai Gorango Bolo Nitai, 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 Nitai Gorango Bolo Nitai, 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 Nitai Gorango Nitai Gorango, Bolo Gorahori Nitai Gorango Bolo Gaurahori Hare Gora Gora Gaurahori Bolo Gora Gora Gaurahori jai Satchinandana Gaura Hari, aur jai Satchinandana Gaura Hari, jai Satchinandana, jai Satchinandana, Satchinandana, jai Satchinandana. Anitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jagannatha Swami Nayana Bhatavani Nayana Swami Baba Tume Jagannatha Swami Baba Tume Jagannatha Swami Nayana Bhatavani Nayana Bhatavani Baba Tume Nayana Bhatavami Baba Tume Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe O Radha Rani Ki Jai Maharani Ki Jai Radha Rani O Radha Rani Ki Jai Maharani Ki Jai Radha Rani Ki Jai Maharani Hey Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare Jugadharma Nam Sangritan Ki Hare Krishna Mahamantra Ki Jagannath Gorkatha Karikram Ki Sila Bhupad Ki Gaur Prevanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण। इस जगन्नाथ गौर कथा का तीसरा दिन आज जोगिनी एकादशी भी है, तो आज तीसरा दिन में हम लोग चर्चा करेंगे राजा प्रताप रुद्र किस तरीका से कलि युग का अपना अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त की थी। राजा प्रताप रुद्र सप्त युग में राजा इंद्रदुम्ब नाम लेकर क्षेत्र धाम में आपने को प्रकटित की थी। अरे राजा इंद्रदुम्ब जगन्नाथ जी का कहते कि अर्च ग्राहक, मतलब अर्च ग्राहक का अर्थ होता है जिन्होंने जगन्नाथ जी को पूरा अर्च अवतार रूप से जगन्नाथ जी को सेवा पूजा की। किस तरीका से उन्होंने सेवा पूजा की आज उसका बारे हम लोग चर्चा करेंगे। राजा प्रताप रुद्र युग में इंद्रदुम्न नाम लेकर इस क्षेत्र धाम में आपने को प्रकटित की। राजा इंद्रदुम्न का सेवित जो विग्रह, उनका पिताजी का नाम है पुरुषोत्तम देव और माता पद्मावती। पुरुषोत्तम देव जीवन का शुरुआत से विष्णु भक्त थे, लेकिन विष्णु भक्त होने का कारण हर समय उनको मन में विचार था कि मैं नील माधव रूप से मैं भगवान को सेवा करना चाहता हूं। बड़ा परिवार का है, पुरुषोत्तम क्षेत्र का पूरा राजा है, जिसके लिए उनका नाम है राजा पुरुषोत्तमा। राजा पुरुषोत्तम क्षेत्र घराया, क्षेत्र ऋषि कहते हैं। तो ये राजा पुरुषोत्तम जीवन का शुरू से विष्णु भक्त, उनका सेवित विग्रह। उन्होंने बहुत साल तक प्रयास किए थे कि मेरे को अपना मन में जो विचार है, अपना मन का अच्छा होता है। शास्त्र में वर्णन किए लोगों को समीपात क्षेत्र धाम अच्छा अवतार श्री जगन्नाथ अयोध्य नमः। तो राजा इंद्रदुम्न मन में विचार की थी कि मेरा परम प्रिय प्रभु नील माधव को मैं साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। शास्त्र में बताते हैं कि शक्षाधरित्रेना समस्त शास्त्री रुक्त तथा भावत एव सजु किंतु प्रभय प्रिय एव तस्य वंदे गुरुस्ति चरणारविंद। उनका मन में विचार था कि मैं साक्षात रूप नील माधव रूप से मैं अपना नील माधव को मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन भगवान कुछ अलग योजना बना दी। ये जगन्नाथ जी की एक योजना भी है। जगन्नाथ जी जिनका कोई भक्त का मन में कुछ दूसरा भावना रहते हैं तो जगन्नाथ जी उसको दूसरा भाव से प्रकटित कर देते। इसके लिए जगन्नाथ जी का और एक नाम है योजना अवतार अर्चया। योजना अवतार अर्चन, मतलब आपका मन में कुछ विचार है लेकिन जगन्नाथ जी को दूसरा भाव में प्रकटित हो जाते हैं। राजा इंद्रदुम्न सोच लिए कि मेरा परम प्रिय प्रभु नील माधव रूप से मैं उनका पूजा करना चाहता हूं। राजसभा में आए आकर सबको पूछने लगे, आपके में ऐसा कोई है जो कि नील माधव रूप का आपका दर्शन किए हो? सब लोग ना बोल दी कि हम कभी भी देखा भी नहीं कि नील माधव विग्रह किस तरीके से होता है। तो राजा इंद्रदुम्न बड़ा दुखी हो गए सुनकर कि मैंने मेरा परम प्रिय प्रभु नीलमाधव रूप से मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है जो कि एक बार भी नीलमाधव रूप से किसी को दर्शन किए। तो जब भक्त दुखी हो गए, भक्त को दुख को निभाने के लिए भगवान ने एक सलाह बना दी, भगवान आपने एक प्रिय भक्त को फिर उसी राज दरबार में भेज दिया। पुजारी आके कहने लगे कि हे राजा इंद्रदुम्न, आप दुखी मत रहो, आपका मन में जो विचार है नील माधव, मैं किसी भी तरीका से नील माधव को मैं ढूंढ कर लेकर आता हूं। तो राजा इंद्रदुम्न कहने लगे कि तथा जो आपका मन विचार है अब करो, लेकिन मेरा परम प्रिय प्रभु नील माधव रूप से मैंने उनको सेवा करना चाहता। तो पुजारी ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूछ गए मालवीय देश में। हरिबोल जो शांत रहने का आज का जो आलोच्य विषय है राजा प्रताप रुद्र, ये बड़ा कठिन विषय है जिसमें कि हमारा आचार्य लोग अच्छे से इनका टीका टिप्पणी का माध्यम से बताएं, तो मैंने प्रयास करूंगा राजा इंद्रदुम्न तथा प्रताप रुद्र के बारे कुछ वर्णन करने के लिए। तो पुजारिया के कहने लगे कि ठीक है राजा, आपका मन में जो विचार है तो मनोगतो रथा, मतलब आपका मन में जो विचार है मैं उसको प्रयास करूंगा आपका मन को ठीक रखने के लिए। तो मैं कहां पे भी मैं पूरा विश्व में परिभ्रमण करूंगा, मैं नील माधव को मैं किसी तरीके से पता करके आऊंगा। इसी तरीका से ढूंढते ढूंढते पुजारी पहुंच गए थे एक शबर घर में। शबर घर में जाकर विश्ववासी बोल के पुजारी और उनका एक सुंदरी लड़की घर में रहती थी। तो विश्ववासी का घर में जब उन्होंने पूछ गए पुजारी पूछने के बाद पुजारी को अच्छे तरीके से स्वागत किए, सेवा भी किए। तो इसी तरीके से जब इस लड़की के द्वारा उनको संबंध आगे बढ़ रहे थे, तब एक दिन उन्होंने सोच पूछने लगे कि अच्छा मैं देख रहा हूं कि आपका पिताजी हर दिन रात को कहां निकल जाते हैं, हर दिन रात को निकल जाते, सुबह पहुंचते घर में, जब घर में वो पहुंचते हैं मैं देखता हूं कि उनका पूरा शरीर से बहुत ही एक सुगंधी आ रहा है, कहां चला जाते हैं वो रात को। लेकिन लड़की का मन में विचार था कि मेरा पिताजी के सामने मैंने जवाब दिया था कि मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगी ये बात को। लेकिन उसी पुजारी के ऊपर कन्या का एकदम प्रेम आ गए, तब उन्होंने बता भी दिए। मैं तो वो अच्छा ऐसा है, इसके लिए तो मैं ढूंढ रहा था। तो पुजारी दूसरा दिन आए, लड़की ने बता दिया कि पिताजी मैंने ये गलत कर्म कर लिया मैंने। मतलब क्या किया आपने? मतलब मैंने, आप जो रात को जाते हो ना नीलमाधव को पूजा करने के लिए, ये जो हमारा घर में जो मेहमान आए मैंने उसको बता भी दिया। तो पुजारी क्रोधित हो गए सुनकर, मैंने इतना दिन तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहां जाता हूं, आप किस तरीके से बता दिए हो। तो लड़की कहने लगी कि पिता मेरा मन में जो विचार था मैं उनका साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, संबंध का कारण मैंने उनको बता भी दिया हूँ कि मैं, मेरा पिताजी हर दिन रात को जाता है नील माधव को पूजा करने के लिए। आज नील माधव को पुष्प चंदन के द्वारा पूजा कर जब उन्होंने वापस आते हैं घर पे, तब उनका पूरा शरीर से सुगंधी बात को निकालते रहते। पुजारी ने एक दिन विश्ववासियों को कह दिया कि हे परम पूज्य पिता, मेरा मन में भी एक विचार है, आप जहां पे जाते हो ना नील माधव को पूजा करने के लिए, मैं इतना दिन तक मैं इसी नील माधव को मैं ढूंढ रहा था, मेरा परम प्रिय राजा इंद्रदुम्न ने भी तो को बताया कि आप जहां पे भी रहो आप नील माधव को ढूंढ कर लेकर आओ। तो विश्ववासी ने कह दिया कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त में मैंने आपको लेकर जा सकता हूं। मतलब कौन सा शर्त है? आप कुछ भी शर्त बोलो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मतलब मैंने आपको आंख बंद करके लेकर जाऊंगा उसे नील माधव के पास। मतलब आंख बंद करके लेकर जाओगे? मतलब हाँ, जब मैंने नील माधव मंदिर में पहुंच जाऊंगा तब मैंने आपको आंख खोल दूंगा मैं सीधा। तब पुजारी भी बड़ा चतुर है, पुजारी ने क्या की कि अपना कपड़ा का अंदर उन्होंने कुछ रुई बगल लेकर गए साथ में, तो उसी वीज के द्वारा क्या किया उन्होंने, जब पुजारी लेकर जा रहे थे साथ में, तब जो रास्ता से निकल रहे थे उसी रास्ता में उन्होंने फेंकना चालू कर दिया। गोभी रात में पूज गए नील माधव मंदिर में, पुजारी ने उनको आंख खुल दिए, आंख का पट्टी खुल दिए पूरा, तो देखा कि नील माधव का जो विग्रह है, श्री विग्रह हारा धन नित्य नाना, उसी विग्रह को देखकर पुजारी ने चमकित हो गए। चमकित होकर उन्हें सोचने लगे कि देखो कितना सुंदर विग्रह है, इस संवाद अगर मैं राजा को जाकर दूं तो राजा मेरा राजा इंद्रदम्भ कितना खुश हो जाए। तब पुजारी कहने लगे कि सुनो आप इधर बैठो, मैं ए नील माधव के लिए तेरा पुष्प लेकर आता हूं बाहर से। तो उन्होंने बाहर गए तो नील माधव को दर्शन करके और पुजारी बाहर आके सब देखना चालू की। तब उन्होंने देखा कि एक कौआ तुरंत उसी जगह में पोतित होकर उसका मृत्यु हो गए, और स्वयं भगवान विष्णु आकर उनको लेकर आए विष्णु लोक तक। तो पुजारी ने सोचने लगे कि क्या अद्भुत कारण है, ये भगवान ऐसी है कि देखो इनका धाम में अगर कोई भी व्यक्ति पतित भी हो जाए तो विष्णु लोक तक प्राप्त हो सकते हैं। तो नील माधव को जब पूजा वगैरह हो गए, फिर पुजारी उसी ब्राह्मण को लेकर आग के पट्टी बांधकर फिर घर में लेकर आए। तो लेकर आए, दो दिन उन्होंने रुका था पुजारी का घर में, फिर तीसरा दिन में उन्होंने पहुंच गए राजा इंद्रदम्भ के दरबार में। जब दरबार में पहुंच गए उन्होंने तो पूछने लगे कि राजा आपका मन में जो विचार था मैंने उसको पक्का कर दिया। तो किस तरीके से पक्का की, बोले आपका मन में विचार था कि आपने नील माधव का आपको दर्शन करना है, चलो मैंने पता करके आया हूं कहां पे नील माधव है, लेकिन एक शर्त मैं रख रहा हूं आप पर। तो कौन सा शर्त बताओ, मतलब मैं जब जा रहा था ना वो विश्ववासु के साथ, मैंने कुछ रास्ता में फेंक के फेंक कर जाए, तो उसी बीच के द्वारा जब बहुत सुंदर पेड़ बन जाएगा उसी पेड़ को देखकर मैंने आपको लेकर जाऊंगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा बात आपने बताया, आपका दिमाग कितना काम करता है। देखो इसके लिए तो आपको मैं कहता हूं कि विश्व वरेण्य राज पुरोहित तबह। तो पुजारी राजा इंद्रदम्भ को लेकर गए, लेकिन जाने के बाद वो नीलमाधव रूप से राजा इंद्रदम्भ को दर्शन नहीं मिले। तो पुजारी बड़ा दुखी हो गए, विश्ववासी को पकड़ कर लेकर आए, पकड़कर नुक्ति करके अपने राज तक लेकर आए थे। तो भगवान नील माधव बड़ा दुखी हो गए, दुखी के साथ साथ क्रोधित भी हो गए थे। तो राजा इंद्रदम्भ को रात को सपने में बुलाया कि देखो राजा इंद्रदम्भ, आपने जितना भी प्रयास करो मैं आपको नील माधव रूप से मैंने दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन आप मेरा परम भक्त हो, आपको मैं दर्शन दूंगा लेकिन दारू ब्रह्म रूप। तो वही दारू ब्रह्म रूप का एक रूपांतर है भगवान श्री जगन्नाथ जी। किस तरीके से दारू ब्रह्म रूप से प्रकटित हुए, तो राजा कहने लगे ये भगवान नील माधव मेरा परम प्रिय हृदय ग्राही नील माधव, मेरा मन में ये विचार था कि मैं आपको अच्छे तरीके से अच्छा विग्रह रूप से मैं आपको सेवा करना चाहता, लेकिन अगर आप मेरे को दर्शन नहीं दोगे तो मेरे को कुछ कहने का नहीं है, आप जिस रूप से मेरे को दर्शन देना चाहता हूं तो मैं उसी रूप से मैं आपको दर्शन करूंगा। तो नील माधव कहने लगे कि राजा सुनो ध्यान से, मैं दारू ब्रह्म रूप लेकर मैंने आपको दर्शन दूंगा, उसी दारू ब्रह्म से आप मेरे विग्रह को प्रकटित कराओ। तो राजा कहने लगे किस तरीके से मैं प्रकटित कर, बोलता देखो कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जिस दारू ब्रह्म से मेरा विग्रह को प्रकटित करे। तो राजा ढूंढने लगे उसी प्रकार व्यक्ति को, नहीं मिल रहा है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गए लेकिन नहीं मिल रहा था। कभी भगवान ने फिर और एक योजना बनाई, भगवान एक दोड़ित रूपों का वेश में, कोई कोई शास्त्र में वर्णन किया कि स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे उसी दारू ब्रह्म रूप को प्रकटित करने के लिए, एक दोड़ित ब्राह्मण रूप लेकर एक रूपकार आए जो बनाने वाले हैं। कहने लगे कि राजा मैंने आपका मन में जो विचार है जिस विग्रह आपको रचना करना है उसी विग्रह को मैं आपको बना देता हूं, लेकिन एक शर्त है। बोलते क्या शर्त है, मैंने 21 दिन में उस विग्रह को मैंने बना दूंगा, लेकिन जिस घर में आप मेरे को विग्रह बनाना है उसी घर में कोई आ नहीं सकते। अगर कोई भी व्यक्ति आ गए तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। राजा ने बोल दिया कि ठीक है तथा, तो आपका मन में जो विचार है वही करो, लेकिन मेरे को विग्रह मेरे को प्राप्त करना है। तो राजा का आज्ञा अनुसार उसी रूपोकार तथा विश्वकर्मा जी ने उसी विग्रह चालू की। 10 दिन गए, 15 दिन जब हो गए, राजा का मन अस्थिर हो गए। मन तब चंचल अस्थिर कारण तब दर्शन, उत्कल भाषा में एक ग्रंथ है जिसका वर्णन किया, मन तब चंचल उत्कल दर्शन अनाविग्रह तब कारण। कहने लगे कि मैं 15 दिन हो गया लेकिन कुछ आवाज निकालते नहीं। रानी ने भी माना किया, गुंडीचा ने, गुंडीचा महारानी उनको माना भी कि राजा इधर से मुक्त किया, मत जाओ अंदर, पूरा प्रजा सकल सब लोग उनको माना कर दी, लेकिन फिर भी राजा सुना नहीं। मोनो अस्थिर चंचल मस्तिष्क, मोन जब किसी को स्थिर नहीं रहते दिमाग उसका काम नहीं करते, इसके लिए कहते हैं शास्त्र में मोनो अस्थिर चंचल मस्तिष्क। तब मोन जब उसका ठीक नहीं है, तब उन्होंने 15 दिन में दरवाजा का पट खुल दिया, तुरंत जाकर जाकर देखो रूपकार नहीं है, जो बनाने वाले तो वो भी नहीं है, और जो विग्रह बनने वाला था उसको सब कुछ है लेकिन उनका हाथ पाए कुछ नहीं पाए, और वही रूप है श्री जगन्नाथ है। तो राजा ने बड़े दुखी होकर भगवान को पूछने लगे कि भगवान मैं ये रूप से आपको देखना नहीं चाहते थे, मैं चाहता था कि आपका बहुत सुंदर दो हाथ हो जाए, बहुत सुंदर दो पैर बने, मैं आपको अच्छे तरीका से श्रृंगार करे। तो भगवान कहने लगे कि सुनो राजा इंद्रदम्मो, जिस रूप से मैंने आपका सामने प्रकटित हो ये मेरा एक योजना थी, आप मेरा परम प्रिय भक्त हो, इसके लिए मैंने इसी रूप से मैंने आपका सामने प्रकटित होंगे, और आप मेरे लिए एक ही बहुत ही सुंदर से सुंदर एक मंदिर आप बनाओ, जिस मंदिर में आप इसी विग्रह का स्थापना करो। तो भगवान का आज्ञा सुनकर राजा इंद्रदम्न ने बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनाया, आज उसी मंदिर में जगन्नाथ जी को उन्होंने स्थापना भी की, और उसी मंदिर को उद्घाटन के लिए राजा का मन में विचार था कि मैंने स्वयं ब्रह्मा जी को बुलाकर लेकर आऊंगा। तो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए राजा इंद्रदम्न पहुंच गए थे ब्रह्मलोक तक, जाके कह दे कि हे ब्रह्मा जी, मेरा मन में विचार है कि मैंने जो इतना सुंदर मैंने मंदिर बनाया हूं, शास्त्र में वर्णन किए कि विश्वकर्मा जी आकर स्वयं ये पुरुषोत्तम देव का जो पूरी मंदिर विश्वकर्मा जी ने बनाया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि राजा इंद्रदम्न जरा ध्यान से सुनो, जिस विग्रह आपका क्षेत्र में प्रकटित हो गए उसी विग्रह कहते हैं कि अप्राकृत विग्रह नम्न धारणा, अप्राकृत विग्रह नम्न धारणा, जिस विग्रह आपने प्रकटित किए उधर वो विग्रह अप्राकृत है, वो मेरा ताकत नहीं है, मेरा शक्ति नहीं उसको उद्घाटन करने का। तो राजा दुखी होकर आ गए फिर। तो जब राजा गए थे उनको पास ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, तो 3 युग निकल गए उसमें। जब राजा फिर आए आकर देखा कि उसमें से 2-2 और मतलब जो मंदिर उन्होंने बना के गए थे वो एकदम नीचे गिर गए पूरा, उसका कोई अस्तित्व नहीं मिल रहा है। तो राजा ने बड़ा दुखी होकर देखा कि दूसरा एक राजा उसको देखभाल कर रहे हैं। तो राजा इंद्रदम्न के कहे सुनो, मैंने मंदिर को बनाया था, लेकिन उन्होंने मना नहीं ये बात। जब मना नहीं तब देखा कि एक भूषंडी कौआ जो कि युग के जुगंतर तक उसी जगह में रहते, उन्होंने सब कुछ देखा कि राजा इंद्रदम्न इसी तरीके से मंदिर बनाया, इसी तरीके से विग्रह को स्थापना की। जब भूषंडी कौआ ने बताया कि नहीं, ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर स्वयं राजा इंद्रदम्न बनाया है, तब उन्होंने छोड़ दी आपका हिसाब। और यही राजा इंद्रदम्न जो कि सत्य युग में ये मंदिर को स्थापना की थी, वही राजा इंद्रदम्न कलि युग में चैतन्य पार्षद रूप लेकर राजा प्रताप रुद्र रूप लेकर उन्होंने अपने को प्रकटित किया। जो राजा प्रताप रुद्र वही सत्य युग में राजा इंद्रदुम्ब थे। गौरमंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार हय ब्रजभूमि बार। गौरमंडल भूमि आज ब्रजभूमि आज श्री क्षेत्र भूमि ये तीनों में कुछ अंतर नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, गौरमंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार हय ब्रजसुते बार। गौरमंडल আর এই ক্ষেত্রধাম পুরী আর নবদ্বীপ মন্ডল গৌরধাম ব্রজধাম এ তিন মে কিছু অন্তর নেই। ব্রজ লীলা মে জিতনে পার্ষদ থে হার পার্ষদ গৌর লীলা মে আলগ আলগ রূপ লেকর প্রকটিত কি জেসে কি বলরাম বলরাম হইল নিতাই। स्वयं बलराम नित्यानंद प्रभु रूप लेकर इसी धराधाम में आपने को प्रकटित किया। ये भी भगवान का एक योजना है। इसके लिए कहते कि पांचों पंच धाम मायापुरे जन्म जार काटो आए सन्नास तार। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम में आपने को प्रकटित की और काटोआ में जाकर उन्होंने सन्नास। इसके लिए काटवा भी एक धाम। धाम किसको कहते हैं? जहां पे स्वयं भगवान विराजमान होकर लीला विलास की थी उसको कहते हैं कि धाम। और एक शब्द के साथ हमने परिचित है बहुत, जिसको कहते हैं कि श्रीपाठ। श्रीपाठ का अर्थ होता है जो कि भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद। जो नित्य सिद्ध पार्षद जहां में रहकर भगवान सेवा वगैरह की उसको कहते कि सी पाठ। तो धाम का अर्थ था जहां पे स्वयं भगवान जाकर विराजमान होकर लीला विलास की, और पाठ मतलब जहां पे भगवान का पार्षद बिंदु जाकर लीला विलास की थी उसको कहते कि सी पाठ। जैसा नित्यानंद प्रभु एको चक्र धाम में प्रकटित हुई इसके लिए वो एको चक्र धाम स्वयं भगवान प्रकटित होकर विराजमान आपके लीला को आगे बढ़ाए। और उनका पार्षद बिंदु जैसा है जैसा अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु जगत करता उन्होंने शांतिपुर धाम में प्रकटित हुए क्योंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु रवता जिसके लिए वो अद्वैत धाम शांतिपुर धाम कहते नरोत्तम दास जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद गौर परंपरा धारा में जिसको पार्षद कहते हैं उन्होंने अलग जगह में जाकर अपना लीला को प्रकटित करा है उसको कहते हैं कि श्री पाठ। तो श्री पाठ और श्री धाम ये दोनों में अंतर रहते हैं। तो राजा इंद्रदुम्ब सत्य युग में आपने को प्रकटित की और वही राजा इंद्रदुम्ब का प्रकटित भाव से राजा प्रताप रुद्र कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद रूप लेकर आपने को प्रकटित कराया। ये दोनों में भोपाल जी कहते कि बाह्यिक में कोई फर्क नहीं है दोनों का। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब उन्होंने महाप्रभु का अंतरंग पार्षद यथा कि श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत होकर फिर उनको आना है पूरी जगन्नाथ मंदिर में। पहले एक बार महाप्रभु आकर गए तो फिर उन्होंने चला गए थे दक्षिण भारत। तो महाप्रभु गए दक्षिण भारत में सार्वभौम भट्टज नहीं गए साथ में। ये भी एक भगवान का योजना है। भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर टिप्पणी में बताया कि अगर सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर महाप्रभु चला जाते थे दक्षिण भारत में तब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र का मिलित नहीं होता था, साक्षात नहीं मिलते थे दोनों। ये भी एक योजना है भगवान का, हर तरीके का कार्य ये प्लानिंग का माफिक होते हैं। बिना प्लानिंग में कुछ नहीं होता। तो महाप्रभु पहुंच गए थे दक्षिण भारत साथ में तुलसा एक दो गौर पार्षद को लेकर गए, लेकिन सार्वभौम मर्जे को छोड़कर गए पूरी धाम में। तो राजा प्रताप रुद्र ने जब सुने, तब उन्होंने उड़ीसा का राजा है, जब उन्होंने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य इधर है, तब सार्वभौम भट्टाचार्य को राजा प्रताप रुद्र ने बुला लिया। ये पंडित प्रबोध आजी तुम्हारे साथ साक्षात करो तुम ही बाजी, तुम्हारो साक्षात लोई करो की चुआन, तुम्हारो आत्मा तत्ते आमारो विश्वास प्रगान। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाकर लेकर आए। राजा प्रताप रुद्र ने बड़ा अच्छे तरीके से उनको स्वागत वगैरह की। आर्य स्वागत करने के बाद राजा प्रताप रुद्र कहने लगे कि हे सार्वभौम परम पंडित वर सार्वभौम, आमारो हृदय कथा कहो किछु, आमारो हृदय कथा सुनो तुम यहां, मतलब मेरा हृदय में कुछ बात है जो मैंने आपको बताना चाहता हूं। মম নিবেদন শুনো তুমি কহ কিছু আর, তোমার আজ্ঞায় আমি চলি নি প্রচার। কেন লাগে কি দেখো মেরা মন মে কুছ বাত হ্যায়, তো মানে কিতনা দিন তক মানে সোচ রা থা মহাপ্রভু কা ইতনা গুণো কীর্তন মানে সুনা হুঁ, ইতনা গুণো কীর্তন শুননে কে বাদ ভি মানে আজ তক উনকো দর্শন নেই মিলে। ইসমে শাস্ত্র মে বর্ণন কিয়ে, শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয় গৌরইতে আইলা কিয় মহাকৃপা ময়, তোমারে বহু কৃপা কইলা কহে সর্বজন, কৃপা করি করাও মোরে তাহার দর্শন। চেতন চেতন গ্রন্থমে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করল, শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয় গৌর হইলে আইলা কিহ মহাকৃপা ময়। মানে এক বাত শুনা হুঁ কি আপনার ঘর মে गौर मंडल से ऐसे कोई एक महान सन्यासी आए जे कि सबको कृपालु सबको कृपा दे रहे, तो मैं भी उनको एक बार मिलना चाहता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र का मुखड़ विंद सी बात सुनकर एकदम आश्चर्यित हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, सुनो सुनो राजा तबे सुनो दिया मन, आमारो सन्यासी एक विरक्त हे मन, রাজ হইয়া করে তিনি কাহা না দর্শন, রাজবেশে তাহার হয় সমতুল্য মন। কইতে কি শুনো, এই যে সন্ন্যাসী হয় না শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, এ কবি কই রাজবেশ রূপ সে কিছু কো দর্শন নেই করতে। আপ রাজা হো, রাজা প্রতাপ রুদ্র হো আপ, তো আপকো রাজা রূপ সে কবি আমারা এই সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কিছু কো দর্শন নেই দেতে। अरे ये तो एक बात है, दूसरा है अभी तो इधर है ही नहीं, वो तो गए दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से जब वो फिर आएंगे ना इधर, तब मैं सोचूंगा कि आपको सब किस तरीके से उनको दर्शन कराना है। अभी मेरा मन में विचार है कि मैं उनके लिए घर ढूंढ रहा हूं। तो राजा प्रताप रुद्र कहने लगे, सुनो हे पंडित प्रवर तुम्हारो ध्यान आजी, तुम्ही तो कतो जानो ही महाप्रभु रो वाणी। कहने लगे, आप कितना विद्वान हो कि आप इतना साल तक ये एक महान सन्यासी को आपने संग किए हो, और उसकी संग का कारण आपने इतना ज्ञान प्राप्त किए हो। महाप्रभु महाबदन्य अवतार, नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिशे नमः। तो महाप्रभु महाबदन्य अवतार, सबको उन्होंने कृपा बांटने के लिए इसी कली युग में इसी अवतार रूप से आपने को उन्होंने प्रकटित भी किए हैं, लेकिन मैंने इतना पापी व्यक्ति हूं कि उनको मेरे को दर्शन नहीं मिल रहा है। पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारिल तारो साक्षी जगाई आर माधार। तो राजा प्रताप ने तो बहुत शास्त्र अध्ययन की, शास्त्र अध्ययन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वार्तालाप की, सुनो सुनो पंडित प्रभुराज কহ না এক কথা, তোমার মধ্যে জ্ঞান দত্ত হইল সে বারো ব্যথা। কেন যে আরে আপনি মহান পণ্ডিত প্রবর হওয়া, ইতনে জ্ঞান আপনি প্রাপ্ত কি মহাপ্রভু কাজ করলে কে বাদ, মহাপ্রভু সব পাপী ব্যক্তি কবি উদ্ধার কিয়ে, তো সোচলো কি মে ভি এসে পাপী ব্যক্তি হুঁ। তো সার্বভৌম মতে কেন লাগে, শুনো হে রাজা তব তোমারও কথা এ আজি, তত হি বাচ নায় तत्वगत चौगाछी। कहने लगे देखो सुनो राजा, हमारा जो पंडित है ना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इसको कहते हैं कि विरक्त सन्यासी, मतलब ये कभी भी इसका मन में कुछ क्रोध आ सकता है। ये क्रोध का कारण बहुत सारे गौड़ी और पार्षद वृंद को उन्होंने छोड़ भी दिए। मैं पहला दिन बताया था कि छोटा हरिदास को किस तरीका से महाप्रभु ने तट भी दिए। ये छोटा हरिदास और हरिदास ठाकुर दोनों में क्या अंतर क्या है? छोटा हरिदास का माध्यम से महाप्रभु ये वत्स जीव को सिखाए कि किस तरीका से साधु होकर रहना चाहिए, और हरिदास ठाकुर का माध्यम से ये वत्स जीव को उनके शिक्षा प्राप्त कराए कि हरि नाम का महत्व तो क्या है, जिसके लिए कहते कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो हमारे ये जो सन्यासी है ना, ये वैरागी सन्यासी है। वैरागी सन्यासी कहो कि चुआज ताहारो मारता लापे हो बारे बार, मतलब हमारा जो सन्यासी है ये सन्यासी एकदम वैरागी है, और वैरागी होने का कारण कभी भी इसका मन में कुछ क्रोध भी जागृत हो जाते हैं। तो राजा, आप राजा हो, राजा रूप में ये वैरागी सन्यासी कभी आपको दर्शन नहीं करेंगे। तब तो करे कि पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई और माधार। तो जगाई माधाई तो उन्होंने उद्धार कर दिए कि सोच ले कि मैं उनसे भी ज्यादा पापी व्यक्ति हूं। तो सार्वभौम वचन कह ले कि ठीक है, शांत हो राजा प्रवर, किचु दिन अपेक्षा करो हो तोड़ो प्रवर, मतलब आप थोड़ा शांत हो जाओ, अभी थोड़ा समय बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसी धाम में आ रहा है। तो जब मैंने पूरा क्षेत्र धाम क्षेत्रवासी को मैंने परिचित कराऊंगा, तब मैंने प्रयास करूंगा कि आपके साथ उनका वार्तालाप करा रहे। अभी मेरे को मन में विचार है कि उनके लिए एक सुंदर, मतलब जिस जगह में रहकर जगन्नाथ मंदिर के सामने रहकर वो अपना भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो राजा प्रताप जो कहने लगे कि सबसे अच्छा जो घर है ना है काशी मिश्र का घर, जिस काशी मिश्र का बारे में कल चर्चा की थी। इस काशी मिश्र का घर में आप कलिजुग का पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव, और उसी जगह में रहकर वो जगन्नाथ मंदिर भी दर्शन कर सकता है। तो कल मैंने वर्णन किया कि किस तरीके से जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे। तो काशी कृष्ण के घर में आकर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु रुकना चालू की। सार्वभौम भट्ट पहला दिन पहुंच गए उसी जगह पर। पहुंचने के बाद महाप्रभु को उनको दंडवत प्रणाम की, और महाप्रभु सार्वभौम को आलिंगन कर सुनो हो तब पंडित प्रवर तुम्हारो ज्ञानेते आदि आलिंगन धार, मतलब हे पंडित प्रवर आपको देखकर मेरे को इतना आनंद आए कि इसके लिए मैंने आपको आलिंगन किया। तो सार्वभौम से कहने लगे श्री विष्णु तब नाम तब कि ना आर तुम्हारो ज्ञानेरो महत्व तुमि करो हो सर्वत्र प्रचार। कहने लगे आप तो स्वयं भगवान हो, लेकिन आपने इसी कलि युग में भक्त रूप लेकर आए, जिसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि स्वपार्षद शिव धाम सह अवतरी। तो महाप्रभु महाबदन अवतार, लेकिन भक्त रूप लेकर इसी कलि युग में इसी धाम में उन्होंने अपने को प्रकट किया। स्वपार्षद शिव धाम, अकेला नहीं आए उन्होंने, स्वपार्षद शिव धाम सह अवतरी। और महाप्रभु का कृपा कौन व्यक्ति को मिल सकता है? भक्ति विनोद ठाकुर गाते कांदिया कांदिया बोले अमित अधम शिखा है शरणागति करो हे उत्तम। कांदिया कांदिया बोले अमित अधम शिखा है शरणागति। शरणागति का अर्थ होता है जो कि अपना मन को भगवान का चरणारविंद समर्पित करती है। सरंग शरणागति होइबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। सरंग शरणागति, सरंग शरणागति का अर्थ क्या है कि दैन भाव से महाप्रभु का चरण में समर्पित करें। दैन आत्मनिवेदन व्रतित्व वरण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अगर आपने मन से भगवान का चरण और बिंदे आपने को समर्पित कर दिए, आपका जो प्रार्थना हृदय में जो भी कुछ रहते हैं भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो राजा प्रतापादित्य का मन में विचार था मेरे को किसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में आपने को समर्पित करना है। তাহার প্রার্থনে শ্রী নন্দ কুমার। अगर हृदय से अगर भगवान का चरण में आपने अगर समर्पित कर दिए हो तो भगवान आपको जरूर आपका मन में जो विचार है जो आशा है भगवान उसको पूरा कर देते हैं। इसके लिए भगवान का और एक नाम है भावोग्राही जनार्दन। आपका भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जिस भाव से अपने भगवान को सेवा कर रहे हो उसी भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को जब आप खिलाते हो भाव से खिला रहे तो भगवान उसी भाव को स्वीकार करते हैं। ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा प्रताप रुद्र से वार्तालाप कर रहे थे तब उन्होंने कहने लगे, हे राजा प्रताप रुद्र, आप राज दरबार से अपने आए हो तो राज दरबार से आकर इतना विनती नम्र निवेदन से जब आप पूछ रहे हो भगवान जरूर आपको एक दिन कृपा करेंगे। शांत हो शांत हो शांत करी बारी मोहन। बहुत ही सुंदर लिखा है चैतन्य मंगल ग्रंथ में लोचन दास ठाकुर, इस पैर छंद में उन्होंने कविता का हिसाब से लिख दी। शांत हो शांत हो शांत हो ए राजा तुम्हारो बोर्तित वार्ता सुनी देन प्रजा। कितना सुंदर इसका वर्णन किया लोचन दास ठाकुर। राजा प्रताप से सोचने लगे, कब कबे हवे मरो सेई दिन जबे आमी दंडित करिब भगवानेर दिन। तो कब मेरा वो दिन आ जाए मेरे सामने जिस दिन मैंने भगवान का चरण में आपने को मैंने समर्पित कर सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु आए पूरी धाम में, आनको ने बहुत अच्छे तरीके से वार्तालाप भी किए और पूरा कुरुक्षेत्र क्षेत्र में जितने सारे गौड़ीय भक्त थे महाप्रभु के पास सबको लेकर गए। आज सार्वभौम भट्टाचार्य सबको साथ उनको मुलाकात भी कराए, परिचित कराए, महाप्रभु सबको आलिंगन भी किए। इसी तरीके से जब वार्तालाप चल रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने महाप्रभु को कहने लगे, प्रभु सुनो मोरो एक निवेदन तुम्हारो चरणे आदि पतित राजा धन। कहने लगे कि प्रभु सुनो, राजा प्रताप रुद्र जो इधर का राजा है वो आपका चरण दर्शन करने के लिए बहुत साल तक वो इंतजार कर रहे, आप जरा उनको कृपा बरसाओ। तो महाप्रभु कहने लगे कि कोहिला पंडित प्रवर राजा है, कि कोहिला पंडित प्रवर राजा को आमी, कि होइलो पंडित प्रवर राजा को दर्शन तब मातृशल आर। बच्चे अरे आपने मेरे को कह दिया कि राजा को दर्शन करो, राजा को दर्शन करना सॉरी राजा को दर्शन और स्त्री का दर्शन बराबर होते हैं, तो आपने मेरे को कह दिया कि राजा का दर्शन करने के लिए, मैंने राजा को तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा। राजा का दर्शन करना और एक स्त्री व्यक्ति को दर्शन करना बराबर होते हैं। सन्यासी होइया स्त्री दर्शन करिबे ना कबो आज, तुम्हारे मने यदि थाके आज चली लू ये दरबार। अगर आपका मन में ये विचार है सन्यासी होकर मैंने राजा का दर्शन करे, राजा का दर्शन मतलब स्त्री का समान होती है, स्त्री को दर्शन करना सन्यासी रूप से शोभा नहीं देते। अगर आपका मन में ये विचार है ज्यादा थान टैग देकर अभी मैंने तुरंत निकल जाऊंगा अलालनाथ में। फिर मैं पहला दिन बताया था कि अलालनाथ दर्शन करने के लिए महाप्रभु ने 5 कारण दर्शन किए। ये भी एक कारण था कि राजा रूप में महाप्रभु किसी को दर्शन नहीं करना चाहते। तो दूसरा दिन राजा प्रताप रुद्र तो फिर आए। इसका अगर किसी को अधिक जानकारी लेना है तो चैतन्य मध्य लीला में इसका बहुत एकदम विस्तारित रूप से वर्णन है कि राजा प्रताप रुद्र सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु का कथोपकथन का एक स्पेशल चैप्टर है इसका, पैर छंद में लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जीवन का अंतिम मुहूर्त में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब उनका उम्र हो गए थे 92 ईयर्स, उसी समय उन्होंने ये चैतन्य चैतन्य ग्रंथ को उन्होंने रचना की। किसी भी अगर पढ़ना है इसका ऊपर तो चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में 42 रूप से इस कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन भी किया। तो दूसरा दिन फिर राजा प्रताप रुद्र पहुंच गए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास। उन्होंने पूछने लगे, पंडित प्रभुरार सुनो कथा एक, तुम्हें कि कहिया मनेर वाक्य बात। अरे हे पंडित प्रभुर सार्वभौम, आपने पूछा था कि मैं उनको दर्शन लेना चाहता हूं, तो सार्वभौमिक का सामने एक धर्म संकट आ गए। किस धर्म संकट? जिस तरीके से महाप्रभु का सामने धर्म संकट आ गया तो संन्यास लेने का समय, मैंने पुरुषवी बताया था धर्म संकट, आज ये प्रतापरुद्र के सामने भी एक धर्म संकट उपस्थित हो गए सर्वमर्चित के सामने। किस तरीके से धर्म संकट? कि प्रतापरुद्र अमानिना मान देना कृष्णनिया सदा। शिक्षा सभम में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अमानिना मान देना कृष्णनिया सदा हरि। दूसरे को मान देना चाहिए लेकिन अपना मान नहीं मांगना चाहिए, और वही व्यक्ति ये कर सकते हैं जो कि कीर्तनिया सदा हरि, जो कि हर समय भगवान का दिव्य नाम जुगो धर्म हरि नाम संकीर्तन उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीर्तनिया सदा तो राजा पुत्र तो आपका मान नहीं मांगते थे कभी, लेकिन दूसरे को मान देते थे। राजा प्रताप रुद्र पूछने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य को, आपने पूछा था मेरा बारे, लेकिन सार्वभौम का सामने एक धर्म संकट उपस्थित हो गए। मैं कैसे इसको बता सकता हूं कि राजा रूप में कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपको दर्शन देना नहीं चाहे। स्वाभाविक रूप से अगर राजा ये बात तो सुन ले तो राजा दुखित हो जाएंगे पूरा। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, सुनो राजा, मैंने उनको पूछा था लेकिन उनका मन में विचार है कि राज रूप में वो अभी कभी भी आपको दर्शन नहीं देंगे। भले भी आपने आपका तन मन धन से आपने भगवान का सेवा कर रहे हो, लेकिन ये राज रूप से कभी आपको दर्शन नहीं देंगे। तो राजा प्रजापति तो कहने लगे, सुनो मोरो पंडित प्रबोध कहो ना कि ये कथा हरि बोल। सुनो मोरो पंडित प्रबोध कहो ना कि ये कथा आमार मलिन हृदय आमी पाइनु कि सर्व व्यथा। तो राजा कहने लगे कि हे पंडित प्रबोध सार्वभौम, मैं समझ गया हूं कि मेरा हृदय आज तक मलिन है, अभी तक मैंने कुछ कर नहीं पाया। सार्वभौम कहने लगी, सुनो राजा प्रवर, तुम्हारो मने रो व्यथा तुम्हारो कलिन मने तुम पाइबे अनेके संग अनेक व्यथा। कहने लगी, अरे सुनो, आपका मन में जो विचार है ना, भगवान एक दिन जरूर आपको कृपा कर देंगे, आप इसी तरीके से भक्ति करते रहो। तो उसके बाद वर्णन किए कि जो काशी मिश्र का घर में पहुंच गए थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जब काशी मिश्र का घर में पहुंचा तो काशी मिश्र ने उनको बड़े अच्छे तरीके से स्वागत वगैरह किए। आज महाप्रभु क्या किए उनको, प्रभु चतुर मुज मूर्ति धोड़ी तारे देखाइला आत्मसात करी तारे आलिंगन कोइला। तो महाप्रभु काशी मिश्र को चतुर्भुज मूर्ति दिखाए। महाप्रभु तुरंग चतुर्भुज मूर्ति विष्णु नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारणकारी श्री विष्णु रूप में उन्होंने काशी मिश्र को दर्शन दिए। काशी मिश्र हटोकारी कहे किचु कथा चतुर्भुज नारायण स्तुति वाक्य जेथा। तो महाप्रभु जब इसी तरीके से चतुर्भुज नारायण मूर्ति काशी मिश्र को दर्शन कराए तो काशी मिश्र ने स्तंभित होकर पुलकित हो गए। तो काशी मिश्र का घर में एक एक करके सबको उन्होंने लेकर आए सार्वभौम भट्टाचार्य। लेकिन जब भी राजा प्रताप रुद्र का बड़े वार्तालाप चालू हुए तो महाप्रभु एकदम चुपचाप शांत हो जाते थे। कहो ना किचु कहो ना को आर एई रूपे आमी तब राजा के करीबो ना दर्शन आर। आप जितना भी आप प्रयास करो मैं किसी तरीके से इसी रूप में राजा रूप से मैंने प्रताप रुद्र का दर्शन। दूसरा दिन राजा प्रताप रुद्र ने अपना अट्टालिका में सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर गए। आज सार्वभौम भट्टाचार्य सबको एक एक करके दिखा रहा है कि देखो नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, ये है अद्वित आचार्य प्रभु, ये है गदाधर पंडित, ये है वक्रेश्वर पंडित। सबको महाप्रभु ने बुला कर लेकर आए। तो सबको देखकर राजा ने दंडवत प्रणाम चालू किया अपना मकान से। तो नित्यानंद प्रभु आए सामने, रामानंद राय भी सामने पहुंच गए, सर्वभूमाचार्य रामानंद राय को लेकर आए उनके पास। जब दोनों ने वार्तालाप चालू की तो अच्छे तरीके से वार्तालाप हुआ तो रामानंद राय कहने लगे कि सुनो सुनो निपति प्रवर, तुम्हारो मनेर वांछा पूर्ण करिबे जगत धारण। मतलब महाप्रभु विश्वम्भर अम्बर का अर्थ होता है जिन्होंने जगत को धारण करते, जगत धारण कोड़ी तब पोड़ो आज। मतलब महाप्रभु जगत को धारण किए जिसके लिए उनका नाम है विश्वम्भर, विश्व को धारण किए। तो रामानंद राय कहने लगी सुनो सुनो निपति प्रवर, तुम्हारो धारण कोड़ी एक पंडित प्रवर। तो आप सोचो मत कभी भी आपको महाप्रभु को स्वीकार कर ले। तो रामानंद राय जब राजा पुरुषोत्तम को दर्शन किए, उनके साथ वार्तालाप किए, और ये प्रताप रुद्र के साथ मिलने के बाद प्रताप रुद्र को छोटा लड़का को लेकर गए कहां पे, महाप्रभु को मिलाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को कृपा दे रहे। प्रताप रुद्र को नहीं मिले लेकिन उनका पुत्र को लेकर आए रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का दरबार में, जहां पे चैतन्य महाप्रभु हर गौड़ी वैष्णव भक्त को आलिंगन कर रहे। रामानंद राय लेकर आए प्रताप रुद्र को छोटा लड़का को साथ में। रामानंद राय कहने लगे सुनो सुनो प्रभु आज आमा संगे आनी आची एक कनिष्ठ प्रवर। तो महाप्रभु पूछने लगे कौन बाट्टा लोइले तुम्हें समुद्र बारे, तुम्हारे सामने आज कैन तारी हारे। मतलब किसको आप लेकर आए हो जिसके बारे आप मेरे को कुछ बोला भी नहीं कभी। तो रामानंद राय कहने लगे ये एक अपूर्व दर्शन कोड़ी तब आर तुम्हारो सम्मुखे आज लोहिल तुम्हार। मतलब देखो मैंने जिसको लेकर आया ना ये है राजा प्रताप रुद्र जो कि हर समय आपका बारे चिंतन करते रहते हैं। सततम कीर्तयन तमाम, जो हर समय आपका ऊपर कीर्तन आपका गुण कीर्तन कर रहे, उनका परम पुत्र को मैंने आपका सामने लेकर आया। तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद दी आज आपना उत्तरी उत्तरी उनको प्रदान कर। तो सब लोग हरी बोल बोलना चालू की, किसी का पुत्र का माध्यम से राजा को अभी कृपा मिलने का समय आ गया। तो महाप्रभु पूछने लगे सार्वभौम कहो तो तुम्हें आज रथ यात्रा आर कत दिन बाकी आज आरे सार्वभौम आप मेरे को बताओ कि रथ यात्रा कितना दिन बाकी है। तो सार्वभौम कहने लगे सुनो प्रभु सुनो आज तीन दिन बाकी आर रथ यात्रा उत्सव तार। कहने लगे प्रभु आप सुनो आज से तीन दिन बाकी है रथ यात्रा का। तो महाप्रभु कहने लगे बोलाओ तबे शुद्ध सबे वैष्णव प्रवर बक्रेश्वरे बोलाओ तबे कांति करवर। अरे रथ यात्रा और तीन दिन बाकी तो ठीक है यार सबको बुला लो साथ में, मेरे तो प्लानिंग करना है। सात प्रहरिया भावे सात सात प्रहरिया भावे सात कीर्तन जोगी। मतलब मैं विचार किया कि सात कीर्तन दल मेरे को रखना है साथ में और एक एक कीर्तन दल में दस दस रहे। किस तरीके से दस भक्त को बताए उसको मैं डिटेल्स में जाऊंगा परसों। उसमें वर्णन किया कि एक एक कीर्तन टीम में दस दस व्यक्ति रहे। किस तरीके से दस व्यक्ति है ना, दो रहे मृदंग वादक दो रहे करताल वादक और इसी तरीके से वर्णन भी है। तो महाप्रभु कहने लगे ठीक है तो आप सबको बुला लो साथ में, मेरे को उसको साथ बैठकर एक प्लानिंग करना है कि किस तरीके से रथ यात्रा में कीर्तन होना चाहिए। सात अंक दोली तब कीर्तन सह जगन्नाथ खुशी कोइलु आधारित तब। मतलब मैं सात कीर्तन दिन बनाकर जगन्नाथ जी के सामने मैं इसी तरीके से नृत्य कीर्तन सह। इसके लिए कहते कि संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। तो राजा प्रताप रुद्र जब ये सुन लिया कि रथ यात्रा तीन दिन बाकी है तब सार्वभौमाचार्य कहने लगे देखो ये आपका सामने एक गोल्डन चांस एक सुवर्ण सुयोग आ गया आपका सामने। किस तरीका से ये जितने सारे भक्त आ रहे हैं सब भक्तों को आप अच्छे तरीके से प्रणाम करो दंडवत प्रणाम मारो और इसी तरीका से जब महाप्रभु जगन्नाथ दत्तात्रेय का सामने उद्दाम नित्य कीर्तन करेंगे तब जाके आप उसके दर्शन कर लेंगे। रथ यात्रा का सामने आया, रथ यात्रा का दिन महाप्रभु उद्दाम कीर्तन कर रहे, संकीर्तन प्रायोजयंती शुभे रथ, संकीर्तन कर रहे महाप्रभु। गोरा नाचे प्रेम बिनोदिया, शास्त्र में कहते हैं कि गोरा नाचे प्रेम बिनोदिया रे नोदिया, गोरा नाचे प्रेम बिनोदिया, संकीर्तने नाचे गोरा, संकीर्तने नाचे गोरा, हरि बोल बोलिया रे हरि बोल बोलिया, गोरा नाचे प्रेम बिनोदिया रे नोदिया, गोरा नाचे प्रेम बिनोदिया। तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ का सामने कीर्तन कर रहे हैं। किस तरीके से कीर्तन कर रहे हैं वर्णन के, दिग विदिग ना जाने गोरा नाचीते नाचीते, अब संकीर्तने नाचे गोरा, होरी बोल बोलिया रे होरी बोल बोलिया। तो महाप्रभु इसी तरीके से कीर्तन कर रहे हैं। जब भगवान कीर्तन करते हैं तब उनका कुछ दिग विदिग नहीं रहते, कहते कि दिग विदिग ना जाने गोरा नाचीते नाचीते, संकीर्तने नाचे गोरा होरी बोल बोलिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने स्वयं भगवान होकर भी कोई युग में भक्त रूप लेकर आकर भगवान जगन्नाथ जी के सामने नाच रहे कीर्तन कर रहे हैं, आज उसी दृश्य को देख लिए कौन न राजा प्रताप ने देखा। जब इसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते भूमि में लुंठित हो गए, और जब उन्होंने भूमि में गिर गए तब राजा प्रताप रुद्र उनको पकड़ लिए। राजा प्रताप रुद्र पकड़ने के बाद महाप्रभु क्या कहे, छी तुम्हारे दर्शन तब हमारे मूल्य भी, बता तुमको दर्शन करने से मेरा भक्ति जीवन खतरनाक है, तुम ही तब निपति तुम्हार, तुम ही होइला राजा सम्राट, तुमको दर्शन करने मेरे लिए शोभा नहीं देते। इस तीन शब्द को उन्होंने उच्चारित किए थे चैतन्य भागवत ग्रंथ में, विद्यावंत दास ठाकुर बोले छी छी छी, मतलब तीन बार उन्होंने छी, मतलब मैं लज्जित हूं आपको मिलने से। तो राजा प्रताप ने बड़ा दुखी हो गई बात सुनकर, तो सर्वर्जुन को सांत्वना दिए। फिर बता कि देखो आप एक काम करो, बता क्या काम है, बोलता कि अभी ये रथ यात्रा चल रहा है, थोड़ा समय बाद भगवान को भोग लगेंगे, आज चैतन्य महाप्रभु को एक जगह में लेकर जाना है, उधर जाकर आप श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने एक अच्छा कीर्तन करो। बता कौन सा कीर्तन, सब कथामृता तप्त जीवन भूरी, तब कथामृत तप्त जीवन भूरी विरीरित कल्म शाप। ये गोपी गीत, ये बहुत ही सुंदर कीर्तन है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको सलाह दी राजा प्रताप को, जहां पे महाप्रभु भोजन करेंगे ना उसी जगह में आप पहले जाओ, जाकर सब भक्तों को प्रणाम कर भक्तों का अनुमति लेकर आप सीधा महाप्रभु को जाकर चरण सेवा चालू करो। आज चरण सेवा चालू करने के बाद आपका मुखारविंद से एक कीर्तन आपने चालू कर दे कि तब कथामृतम। तो राजा प्रताप रुद्र तो शंकित हो गए, बोलते मैंने इसको थोड़ा स्पर्श किए थे सर, जब महाप्रभु पतित हो गए नीचे तो मैंने थोड़ा स्पर्श करने के बाद महाप्रभु मेरे को कह दे कि छी छी छी। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत ग्रंथ में, वृंदावन दास ठाकुर पोयर छंद में इसका वर्णन भी किया है। ये प्रताप रुद्र का जो कहानी है बहुत बड़ा कहानी है, जो कि चैतन्य चरित में एक चैप्टर है इसका ऊपर, एक अध्याय पूरा, उसमें कम से कम 190 श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी राजा प्रताप रुद्र द्वारा महाप्रभु साक्षात ऊपर वर्णन भी किया टोटल। किसी को अगर इंटरेस्ट है इसको पढ़ने का तो जरूर आप चैतन्य चतुर्थी का मध्य लीला और अंत लीला पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत विस्तारित रूप से वर्णन भी किए, कितना प्रेम भाव से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको वर्णन भी किए। तो सार्वभौम भट्ट ने उनको सलाह भी दे दिए कि आप एक काम करो, जहां पे महाप्रभु भोजन लेंगे उसी भोजन का पहले आप उधर पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद सारे वैष्णव भक्त बिंदु उधर है सबको आप दंडवत प्रणाम करो, आज प्रणाम करने के बाद सबको अनुमति लेकर महाप्रभु का चरण सेवा चालू करो और आपका मुखारविंद से आप ये कीर्तन चालू करो, तब को थाम भी था। राजा प्रताप जी एकदम शंकित भी हो गए कि मैंने सर एक ही बार उनको दर्शन किया था, उनको सबका सामने उनको मेरे को बता दिया कि छी छी छी। तब राजा प्रताप जी सोचने लगे कि किस तरीके से मैं जा सकते उनका सामने। तब सार्वभौम से कहने लगे तबो वेश भूषा तबो परिवर्तन, आप ये राजा रूप लेकर अब जाओगे तो महाप्रभु आपको कीपा कभी नहीं करेंगे। राजा वेश को छोड़कर आप वैष्णव वेश में जाकर आप महाप्रभु का कीपा प्राप्त कर सकते। तो सार्वभौम का बात सुनकर राजा प्रताप रुद्र ये राज रूप छोड़कर राज रूप को परिवर्तन तुम्हार परित्याग तुम्हार, ये राज रूप को छोड़कर राजा प्रताप रुद्र वैष्णव वेश धारण करके वो पूछ गए थे महाप्रभु के सामने और सबको उन्होंने प्रणाम भी किए। एक से एक गौड़ी वैष्णव भक्त श्रेष्ठ पुरुषोत्तम धाम भक्त सबको उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जाकर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण सेवा चालू की। कौन सा रूप में? वैष्णव रूप लेकर। वैष्णव रूप लेकर जब उन्होंने चरण सेवा चालू की और मुखारो बिंद से उन्होंने कथा की कि तबो कथा मृतम तप्त जीवनम कोवि भीरीतम कलमशाप। आज लास्ट एक श्लोक है जे भूरी दा जना, जो गोपी गीत गाते हैं जो आठ पंक्तियां का है गोपी गीत, इसका पहला पंक्तियां ये तब कथामृतम तप्त जीवनम कोवि भीरीतम कलमशाप। तो राजा प्रताप रुद्र ने जाकर महाप्रभु के सामने ये तब कथामृत कीर्तन चालू की आज लास्ट लाइन जब आए जे भूरी दा जना जे भूरी दा जना जे भूरी दा जना, जैसे कि माधवेंद्रपुरी पास जीवन का जब अंतिम मुहूर्त आ गए थे कौन सा कीर्तन गए थे? ओ ही दीन दया जो नाथ सदा वल्लभ से, ओ ही दीन दया जो नाथ सदा वल्लभ से, जिसका माधवेंद्रपुरी पास का स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गुण कीर्तन के किस तरीके से सुनो सुनो नित्यानंद कर हो विचार पूरी सब भाग्यवान जगते नहीं आ। ये माधवेंद्रपुरी ऐसे एक भक्त है, देखो सुनो नित्यानंद आप विचार करो, सुनो सुनो नित्यानंद करो विचार पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आ। दुग्ध दान छले कृष्ण देखा तिला तारे, देखो ये माधवेंद्रपुरी एक महान भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण तीन तीन बार उनको दर्शन देने। सुनो सुनो नित्यानंद करो विचार पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं, दुग्ध दान छले कृष्ण देखा दिला तक एक दुग्ध लेकर आए थे सामने। आज उसी तरीका से राजा प्रताप रुद्र ने राज वेश को छोड़कर वैष्णव वेश धारण किए आज श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण सेवा चालू की। आज चरण सेवा जब चालू किए तब उन्होंने अपना मुखारविंद से कीर्तन चालू की कि तब कथा मृतम, और ये कीर्तन का अंतिम श्लोक था से भूरी दा जना भूरी दा जना भूरी दा जना। तो तीन तीन बार जब कहने लगे हे भूरी दा जना हे भूरी दा जना हे भूरी दा जना, तब महाप्रभु कहने लगे बोलो 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 तुम्हें बोलो किछु आर तुम्हारे से आलिंगन कोड़ी मु सवार बता रहे तुम्हें इतना सुंदर कीर्तन की और एक बार बोलो। तब राजा प्रताप इतना आनंदित हो गए कि कहने लगे हे भूरी दा जना ये भूरी दा जना ये भूरी दा जना। इसी तरीका से राजा प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा बरसाए। शुरुआत में देखिए कितना उन्होंने प्रयास भी किए थे लेकिन कृपा नहीं मिली उनको। जब उन्होंने सिभूरी दा जना सिभूरी दा जना सिभूरी दा जना को कीर्तन की तब महाप्रभु आकर सबका सामने राजा प्रताप रुद्र को देखकर उन्होंने आलिंगन किए और क्या कहे अंतिम में सुनो 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 प्रताप कहो किछु आर तुम्हारो प्रेमे आमी होइनु प्रबल। अरे आपने इतना दिन तक आपने भक्ति कर रहे थे लेकिन मैं देखना चाहते थे कि आपका ये राज वेश का ऊपर जितना आसक्ति है उसी आसक्ति के छोड़कर जब आप भगवान का दरबार में आकर भगवान के एक साथ रहोगे तब मैं सोचता था कि आप सही आप भक्त बन गए, सही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा से राजा प्रताप रुद्ध राजवेश नहीं, राज सभा को छोड़कर धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर क्या किए, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में आपने को उन्होंने समर्पित करके आपने जीवन को विदाय। ममो जन्मनि जन्मनि शरे भवतार भोक्ति वही कुटी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ममो जन्मनि जन्मनि शरे भवतार भोक्ति वही कुटी। इसी तरीका से राजा इंद्रदुम्म का जो शुद्ध युग में जो राजा इंद्रदुम्म जो कि भगवान जगन्नाथ जी किस तरीका से कृपा किए, नीलमाधव रूप से नहीं किए, ब्रह्म रूप से उन्होंने किए। आज राजा इंद्रदुम्म का जो अवतार है वो है राजा प्रताप रुद्र जो कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग पार्षद बने, आज किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथ अष्टकम की, जगन्नाथ लीला की, अनिताय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्णा। तो सबके लिए आज एकादशी का प्रसाद है तो कृपा करके प्रसाद लेकर चल जाइए। और ये कथा 9 तारीख तक है, 9 तारीख तक चलेगी, 10 तारीख रथ यात्रा उत्सव है तो कृपा करके सब लोग रथ यात्रा उत्सव में भाग लीजिए। और इसी दिन मैं हर दिन ये बताता हूँ कि जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी बनाकर भगवान को भोग चलेगी। हरे कृष्ण भगवान की जय, शील बहुपाल की जय। सबके लिए प्रसाद है तो प्रसाद लेकर ही जाइए, आज एकादशी प्रसाद सबको मिलेगा। हरे कृष्ण।
जाना पड़ गया टाइम।